ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 3 जनवरी 2021 के लिए है। विषय परमेश्वर स्वर्णपथ गिनती। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। उत्तरदेय ध्यान यशाया फिलिप्पियों। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के नाइन उसकी ओर चलेंगे और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वो अपनी तलवार पीट कर हल के फाल और भालों को हंसियां बनाएंगे। तब तक एक जाति दूसरी जाति के विरोध तलवार न चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। लियावे व्यवस्था। फिर यहोवा ने सीना पर्वत के पास मूसा से कहा। लियावे व्यवस्था। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे ज्ञान को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मी बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और तुम में से 5 मनुष्य 100 और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। इतिहास। इसके बाद मुआबियों और अमूनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशफत पर चढ़ाई की। तब यहोशफत डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए। ये कहने लगे कि हमारे पितारों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता, कि यदि तलवार या मरी अठावा या अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो भीड़ हम पर चढ़ी जा रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। तब जकरिया के पुत्र यजीएल में यहोवा का आत्मा समाया और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशुवत, तुम सब ध्यान दो, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशुवत भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। बिहानकर वो सवेरे उठकर ताकू के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशुवत ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शुभियमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और शहीर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध आ रहा था घातकों को बिठा दिया और वो मारे गए। और यहोशुवत के राज्य को चैन मिला क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। इतिहास। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जूं का तूं करूंगा। यशाया। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। यशाया। क्योंकि जो महान और उत्तम और सिद्धिव और सिथर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर्वत और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग में रहता हूँ जो खेड़ित और निमर हैं, कि निमर लोगों के हृदय और खेड़ित लोगों के मन को हर्षित करूँगा। मैं मुंह के फल का सर्जनहार हूँ, यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको ठीक करूँगा। परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यशाया। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। नंबर 9। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूर कमाता है वो अपनी मजदूरी को छेद वाली थाली में रखता है। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? हिज्जी। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समंदर और स्थल सबको कंपित करूंगा और मैं सारी जातियों को कंपित पाऊंगा और सब जातियों की मन भावनी वास्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब मैं मीरबेक रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सवाल, परमेश्वर क्या है? उत्तर, ईश्वर निगमत दिव्य सर्वज्ञ अनंतमन आत्मा अंतर्मन सिद्धांत जीवन सत्य प्रेम है। सवाल, क्या ये शब्द पर्यायवाची हैं? उत्तर, हाँ वो हैं। वो एक पूर्ण ईश्वर का उल्लेख करते हैं, उनका उद्देश्य देवता की प्रकृति सार और पूर्णता को व्यक्त करना है। ईश्वर के गुण न्याय दया ज्ञान भलाई और इतने पर हैं। सवाल, क्या एक से अधिक भगवान या सिद्धांत हैं? जवाब, नहीं है। सिद्धांत और उसका विचार एक है, और ये एक ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वयागी और सर्वव्यापी होने के नाते है, और उसका प्रतिबिंब मनुष्य और ब्रह्मांड है। ईश्वर सभी चीजों का उसकी अपनी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है, सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर, जो अपनी शांति और सत्यायत प्रदान करता है। मनुष्यों का मानना है कि वो अच्छाई के बिना रह सकते हैं, जबकि भगवान अच्छा है और एकमात्र वास्तविक जीवन है। उसका परिणाम क्या है? दिव्य सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ समझना, जो बचाता है और ठीक करता है। नश्वर पाप बीमारी और मृत्यु से केवल विश्वास में छुटकारा पाते हैं। इन त्रुटियों को वास्तव में नष्ट नहीं किया जाता है, और इसलिए जब तक यहाँ या इसके बाद नश्वर लोगों से चिपके रहना चाहिए। वो विज्ञान में भगवान की सच्ची समझ हासिल करते हैं, जो उसके बारे में मानव भ्रम को नष्ट कर देता है और उसकी सहायुक्ता के भावे वास्तविकताओं को प्रकट करता है। यदि पुरुषों ने अपने वास्तविक आध्यात्मिक सर्वित को सभी आशीर्वाद माना, तो वो आध्यात्मिक के लिए सहारा लेने के लिए संघर्ष करेंगे और शांति से रहेंगे। लेकिन गहरी त्रुटि जिसमें नश्वर मन डूब जाता है, आध्यात्मिक के विरोध में उतना ही अधिक तीव्र होता है, जब तक कि त्रुटि सत्य तक नहीं पहुंच जाती। जब तक मनुष्य की समान जैसा और अमरता अधिक स्पष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, और शरीर प्रतिबिंबित करेगा कि ये क्या निरंतरित करता है। चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ, इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मास के साथ एक युद्ध है, जिसमें हमें पाप बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए, ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का यह वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवता में अविशोषण और उसकी पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं। लेकिन मनुष्य में बढ़े हुए व्यक्तित्व विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र, एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति। किसने महसूस किया कि मानवीय शांति का नुकसान आध्यात्मिकता के लिए मजबूत इच्छाओं को प्राप्त नहीं हुआ है? स्वर्गीय भलाई के बाद की आकांक्षा इससे पहले कि हमें पता चले कि ज्ञान और प्रेम का क्या संबंध है। संसारिक आशाओं और सुखों का नुकसान कई दिनों की आरोही मार्ग को उज्ज्वल कर देता है। भावना के दर्द हमें जल्दी से सूचित कर देते हैं कि भावना के सुख नश्वर हैं और ये आनंद आध्यात्मिक है। भावना के दर्द सलामत हैं यदि वो झूठे सुखदायक विश्वासों को मिटा देते हैं और भावनाओं को आत्मा से आत्मा तक पहुंचाते हैं, जहां ईश्वर की रचनाएं अच्छाई हैं। ये हृदय को आनंदित करता है। ये विज्ञान की तलवार है जिसके साथ सत्य त्रुटि को नष्ट करता है। भावतिकता मनुष्य के उच्च व्यक्तित्व और भाग्य को स्थान देती है। यशाया में हम पढ़ते हैं, मैं उजाले का बनाने वाला और अंधेरे का सृजनहार हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का उद्धार करता हूँ। लेकिन भविष्य अद्विक्ताओं ने ईश्वरी कानून का उल्लेख करते हुए बुराई के प्रति विश्वास को अत्यंत बढ़ा दिया। जब उसे सत्ता पर लाया और उसके सामने भाजक शून्य को कम किया। धारा को शुद्ध करने के लिए मैली नदी को हिलाया जाना चाहिए। नैतिक रासायनिक आकारण में जब बुराई भ्रम के लक्षण बढ़ जाते हैं, तो हम अपनी अज्ञानता में सोच सकते हैं कि भगवान ने बुराई को मिटा दिया है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ईश्वर का कानून तथाकथित पाप और उसके प्रभाव को उजागर करता है। केवल ये कि सत्य बुराई की सभी भावना और पाप करने की शक्ति को नष्ट कर सकता है। निरंकुश प्रतीतियां नश्वर मन में निहित हैं और हमेशा अत्याचार के नए रूपों में अंकुरित होना चाहिए। दिव्य मन की कार्रवाई के माध्यम से निहित होना चाहिए। सभी क्षेत्रों और नस्लों के पुरुष और महिलाएं अभी भी भौतिक अर्थों के बंधन में हैं। अज्ञानी अपनी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें? अफ्रीकी दास की ओर से ईश्वर की आवाज अभी भी हमारी भूमि में गूंज रही थी, जब इस नए धर्म युद्ध के हेरल्ड की आवाज ने सार्वभौमिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई, जो मनुष्य के अधिकारों को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार करने की मांग कर रहा था। पाप, बीमारी और मृत्यु के भ्रूण मानव मन से पृष्ठ हो जाते हैं और इसकी स्वतंत्रता को मानवीय युद्ध के माध्यम से नहीं, संगीन और तर्क से नहीं, बल्कि मसीह के दिव्य विज्ञान के माध्यम से जीता जाना चाहिए। भगवान ने मानव अधिकारों का एक उच्च मंच बनाया है और उन्होंने इसे दिव्य दावों पर बनाया है। इन दावों को कूड़े पंथ के माध्यम से नहीं किया जाता है, बल्कि पृथ्वी पर शांति पुरुषों के प्रति सद्भाव के प्रदर्शन में। समान जैसा पूर्ण और शाश्वत होने के दावों के लिए सुरक्षा केवल दिव्य विज्ञान में पाई जाती है। शास्त्र हमें सूचित करते हैं कि भगवान से सब कुछ हो सकता है, आत्मा के लिए सभी अच्छाई संभव है। ये भावतिक दुनिया अब भी परस्पर विरोधी शक्तियों के लिए अखाड़ा बन रही है। एक तरफ कला और निराशा होगी, दूसरी तरफ साइंस और शांति होगी। भावतिक विश्वासों को टूटना, अकाल और महामारी, चाहत और शोक, पाप, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रतीत हो सकते हैं, जो तब तक चिरानों को मानते हैं जब तक उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। ये गड़बड़ी त्रुटि के अंत तक जारी रहेगी, जब सभी कला को आध्यात्मिक सत्य में निगल लिया जाएगा। प्रेम के उत्तम उदाहरणों के माध्यम से हमें धार्मिकता, शांति और पवित्रता की ओर इग्रासा होने में मदद मिलती है। सत्य के अनंत कार्यों को निहारते हुए हम विराम देते हैं, भगवान की प्रतीक्षा करें, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब तक कि असीम विचार चलता नहीं है और गर्भाधान से अपरिभाषित देवी महिमा तक पहुंचने के लिए पंख लगे हुए हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।